इस वृंदावन को गोकुल वृंदावन कहते हैं, और भगवान का जो धाम है जहाँ से भगवान आते हैं गोकुल गोलोक वृंदावन, तो वहाँ पर भी भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं। नित्य लीला से मतलब रास रास विहार, भगवान की गोचारणी इत्यादि लीलाएं, असुर बद्ध के अतिरिक्त और जो नित्य लीलाएं भगवान की होती हैं तो वहाँ पर होती रहती थी। एक समय की बात है, किसी अचिंत्य शक्ति से, लीला शक्ति के कारण ऐसे भगवान का नित्य अनुराग बढ़ता ही रहता है। क्योंकि राधा रानी के साथ सभी गोपियों के साथ उनका प्रेम है, लेकिन सर्वाधिक आकर्षण भगवान का श्री राधा रानी से है, और श्री राधा रानी का एकमात्र आकर्षण कृष्ण से ही। लेकिन लीला शक्ति के अचिंत्य शक्ति के कारण, तो भगवान की लीला शक्ति है तो उसके अचिंत्य कोई स्वभाव है, उसके कारण भगवान कृष्ण में विशेष रूप से अनुरक्त हो गए एक दूसरी गोपी पर, राधा रानी नहीं दूसरी, उसका नाम था बीरजा। राधा रानी पिता के साथ जैसा कृष्ण का अनुराग था, प्रेम था, वैसा ही प्रेम अथवा उससे भी थोड़ी ज्यादा आसक्ति प्रेम बीरजा में हो गया था। यह भगवान की लीला शक्ति का चमत्कार है। और एक दिन भगवान रासलीला कर रहे थे वृंदावन में, वहां गोपियां थे, हजारों हजारों गोपियां थे, कृष्ण के विहार हो रहा था। हठात कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। रासलीला हो रहे, सभी गोपियां बिहार आधारा में भी सब विहार गए, तब तक बीच से ही कृष्ण गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो सब गोपियां ढूंढने लगे कृष्ण किधर है, आपस में इधर उधर थे, कृष्ण को नहीं देख सकी। वो लोग देख लें कि हम लोगों के बीच में कृष्ण नहीं है, तो कृष्ण का अन्वेषण करने लगे, खोज करने लगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो ढूंढते इस वन से उस वन, एक वन से दूसरे से तीसरे, घूमते गोपियां देखी, दूर एक कुंज है, पेड़ है, पेड़ के नीचे एक कुंज है, और कुंज में कृष्ण बैठे हुए हैं, और कृष्ण के अतिरिक्त एक गोपी बीरजा है। तो पहले देखा कि हम लोगों ने अभी तो पता नहीं था, वो तो समझती थी कि बीरजा हमारे साथ ही होगी, आपस में यहाँ है कि नहीं, यहाँ तो बीरजा थी नहीं, कंफर्म होगा। वहाँ भी भेद होता, मिलता जुलता था बीरजा से, तो वहाँ भी देखिए आपस में जब देखे ना कि हमारे, वो तो समझती थी बीरजा तो हमारे साथ है, हमारे साथ खुद रही, लेकिन वो तो थी नहीं, देखे वो भी नहीं है। तो गोपियों ने देख लिया, श्रीमती राधा रानी ने देख लिया कि कृष्ण और बीरजा एक साथ कुंज में बैठकर विहार कर रहे, और कृष्ण भी नहीं देख रहे थे, कृष्ण नहीं देख रहे थे, गोपियां देख रही। इसके बाद भगवान कृष्ण भी देखे, गोपियां सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी उधर ही आ रहे हैं, लेकिन भगवान को बीरजा को यह भ्रम हुआ कि इन लोगों ने हमको नहीं देखा है, हम लोग देख लिए राधा रानी को, गोपियों को, लेकिन गोपियों ने और राधा रानी ने हम लोगों को नहीं देखा है। दोनों को ऐसा भ्रम रहा, कृष्ण को भी और बीरजा को भी। बीरजा तो कांपने लगी, एकदम कांप गई कि क्योंकि राधा रानी आएंगी तो हमको कितना चेष्टाएज करेगी, कितना मेरी भर्सना करेंगे, कितना तिरस्कार करेगी, और कृष्ण भी एकदम तो क्या किया जाए। लेकिन यही एक भरोसा था कि उन लोगों ने हमको अभी नहीं देखा है, ये उनका भ्रम था, लेकिन यही भरोसा था कि उन लोगों ने हमको नहीं देखा है, तो अब क्या किया जाए। बीरजा भी कांप रही थी, बोले अब तो हम पकड़ी गए कृष्ण को लेकर, मैं इधर आ गए, सभी गोपियां नाराज होंगी, भर्सना करेंगी, हमारा तिरस्कार करेंगी, राधा रानी का विशेष तिरस्कार करेंगी, हमको हो सकता है अपने जू से निकाल नहीं देता हूँ हमेशा के लिए। तो बीरजा को एक सूझी युक्ति, झट से उसने किया कि बीरजा नदी रूप में हो गई, नदी प्रवाहित हो गई, छोटी सी नदी बहने लगी, उसके तट पर कृष्ण, ये राधा रानी रे देख रहे थे बीरजा है ऐसे, और उसने नदी का रूप लिया और नदी के रूप में जल के रूप में प्रवाहित हो गए, और कृष्ण वहां अकेले। सभी गोपियां गई, राधा रानी गई, तो भगवान ने कहा कि हम रासलीला करते करते थक पाए थे, थोड़ा एकांत में रहने की इच्छा थी, इसलिए पूछा और कोई सुने ना, अकेले में आया हूँ, आप लोग यहाँ कोई है नहीं, आप लोग देखेंगे कि नहीं। सभी गोपियों ने देखा था, श्रीमती राधा रानी देखा था, एक तरह से खून पीकर श्रीमती राधा रानी रह गई। एक तो इतना गलती कार्य और दूसरा झूठ बोलना एकदम सहसर असत्य भाषण की कोई नहीं आ रही। ठीक है, मन में क्रोध रहा लेकिन जैसे क्रोध को मैं ठीक है अच्छी बात है। तो फिर राष्ट्रीय अब होने लगा श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों के साथ विरजा बिचारी नदी के रूप में। जब राष्ट्रीय चारण हो गया तो फिर से उसने झट से गिरजा का रूप बना के उसमें घुस गई और उसने गोपियों ने देख लिया कि अब पहले तो अनुपस्थित थी लेकिन इसके बाद तुरंत कैसे आकर मिल गई थी। उसे पूछा कि आप नहीं हम तो आप लोग साथ हैं, उसे शुरू से मैं कहीं गई नहीं थी। दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसे रासलीला हो रही थी तब तक कृष्ण अदृश्य हो गए। तो कृष्ण अदृश्य हो कृष्ण को खोजने के बाद गोपियों ने देखा कि बिरजा किधर है कि नहीं, हम लोग इधर उधर देखा तो वो अभी नदार थे गाय था। तब तो समझ गए कि इन लोगों का जो ट्रिक है वो लोग दोनों बात में कृष्ण और बिरजा बात कर रहे थे, हम लोग का जो ट्रिक है ट्रिक कहते हैं ना बड़ा तो सफल हम लोग हो गए। वो लोग समझते थे कि एकदम हम लोग सफलता पहले भी सफलता मिल गई दूसरे दिन भी बिरजा और श्री कृष्ण कहीं जाकर पुण्य में बिहार कर रहे थे। दूसरे दिन भी सभी गोपियाँ अन्वेषण करते 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 देखी तो गिरजा और कृष्ण दूर बहुत बैठे हुए। और जब कृष्ण और गिरजा ने देखा तो उनका तो ट्रिक सफल था, पहले दिन सफलता नहीं थी बस वही करना है। फिर गिरजा नदी का रूप में हो गई और कृष्ण अकेले और श्री राधा रानी सब गोपियाँ आई तो उन्होंने वही कह दिया कि एकांत में रहने की इच्छा थी, रास क्रीड़ा करते करते मैं थक गया था तो मैं अकेले आ गया था। राधा रानी फिर और कोई नहीं आता ना, ना आप देख रहे हैं। ठीक है, उसने भी श्री राधा रानी सह लिया। फिर कुछ दिन के बाद रास लिया तो फिर वही हुआ, कृष्ण अदृश्य हो गए, बिरजा भी अदृश्य हो गए। तब खोजते खोजते गए तो देख लिए बिरजा और कृष्ण बैठे हुए हैं। श्रीमती राधा रानी को क्रोध था ही नहीं, जल्दी जल्दी गए और बिरजा ने अपना ट्रिक चालू किया नदी के रूप में और कृष्ण अकेले। तो इस बार अब पूछने की बात नहीं थी, श्रीमती राधा रानी गए सीधे उनकी भर्त्सना कृष्ण की, जितना कुछ बोल सकती थी अपशब्द गाली दे सकती थी उतना गोपियों ने मिलकर और श्रीमती राधा रानी ने किया। और बिरजा को कहे नदी रूप में थी कि बिरजा तुमको नदी बनना अच्छा लगता है ना, क्योंकि ठीक तुम क्या समझ रहे हम पहले से, अब यह तीसरा दिन है तुम समझती हो कि बाहर नदी बन जाती कोई जान, हम पहले दिन से तुमको नदी बनने का शौक है ना, हम साफ देते हैं श्रीमती राधा ने तुम जाओ नदी बन जाओ। तो वही बिरजा नदी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नदी है और प्रवाहित होती है। तो बिरजा उस रूप में हो गए और कृष्ण श्रीमती राधा रानी ने स्पष्ट रूप से कह दिया आज से कृष्ण के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं, हम कृष्ण के साथ बात नहीं कर सकते हैं, कृष्ण हम लोग देख नहीं सकते, कृष्ण हम मिलना ही नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि हम कृष्ण का मुंह देखें। इसीलिए कृष्ण बहुत भर्सना करे कि बस अब हम लोगों से कोई संबंध नहीं है, निकाल दिया कृष्ण तिरस्कार करके। श्रीमती राधा रानी ने तिरस्कृत कर दिया, गोपियों ने तिरस्कृत कर दिया तो बिरजा को कृष्ण को बहुत दुख लगा। श्रीमती राधा रानी को देखे बिना एक क्षण के लिए भी युग के समान दिखता था और तो हमेशा के लिए हटा ही दिया, कृष्ण बहुत दुखी थे। श्रीमती राधा एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन, कई एक दिन बीत गया, कृष्ण जाना भी चाहते थे राधा रानी से मिलने के लिए, सकियाँ कहीं आप नहीं मिल सकते, हटा देते थे तिरस्कार करते थे। कृष्ण की ऐसी दशा विचित्र अवस्था में हो गए, न तो कृष्ण बढ़िया से भोजन कर पाते थे, न तो स्नान करते थे, न तो शयन करते, सोते भी नहीं थे, तो विचित्र अवस्था में कई दिन पैसा बिता। भगवान की वह दुर्दशा देखकर, दुर्गति देखकर श्रीमती राधा रानी के जो भाई थे सभी दुखी थे, लेकिन सबसे दुखी थी श्रीराम जो श्रीमती राधा रानी के भाई है। तो उनसे कृष्ण का दुख सहा नहीं गया, भगवान के पास गए, कृष्ण के पास गए और कृष्ण से श्रीराम कहे कि चलिए राधा रानी मेरी बहन है, मैं ले चलता, मैं कह दूंगा तो आपको आपको क्षमा कर देगी, फिर आप बिहार चालू हो जाए। तो जैसे तैसे श्रीराम भगवान के आंसू को पोछे, मुंह साफ किए, विक्षिप्त अवस्था में थे, फिर ले गए जहाँ से उनकी राधा रानी थी। सुनीता राधा रानी उस समय किसी एक वन में अपने सखियों के साथ थी और एक कुएं में बैठी थी, और कुएं के बाहर कुछ सखियों को बैठा रखा था कि इसमें अंदर किसी को नहीं आने देना है, कोई भी व्यक्ति इसमें कुएं में इस परिसर में नहीं प्रवेश कर सकता है। कुछ गोपियों को नियुक्त किया। वहां श्रीदान आए कृष्ण को लेकर, तो गोपियों ने रोका जो गेट पर थी, दरवाजे पर थी, कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं। तो श्रीदान ने कहा, तुम लोग, राधा रानी मेरी बहन है, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तुम लोग दूसरे घर की और तुम मालिक बन गई हो, रास्ता साफ करो। दूसरे को भले रोक सकती हो, मैं उनका बहन भाई हूँ, अब मैं अपनी बहन से नहीं मिल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम क्या है, उनका सख्त आदेश है, किसी को नहीं ले जाना। तो उसका रकझक होने लगा, झगड़ा होने लगा श्रीराम से और किससे, गोपियों से, जो दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में थे। रकझक हो रहा था, वो प्रवेश नहीं कर रहे, वो भी गुस्सा कर रहे थे। श्रीराम भगवान तो चुपचाप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बोल भी नहीं सकते थे, अपराध किया था इतना भारी। बहुत कुलाहल होने लगा, द्वंद होने लगा, झगड़ा होने लगा दरवाजे पर, तो अंदर आवाज जाने लगा। तो श्रीमती राधा रानी कहीं जाकर देखे क्या हो रहा है, दरवाजे पर क्या हो गया। तो श्रीमती राधा रानी और ललिता विशाखा दे रहे सखिया स्वयं आई, यहाँ आई तो देखी कि कृष्ण है। तो कृष्ण को देखते ही मन आग बबला हो गई श्रीमती राधा रानी, और खूब जो कुछ कहना था, जितना अपशब्द बोल सकती थी, जितना तिरस्कार कर दे राधा रानी डायरेक्ट थी। और उसके साथ श्रीराम श्रीराम मना कर रहा था, श्रीमती राधा रानी तुम ये क्या कर रही हो, बंद करो अपना, अंत बंद करा दिया। और कहा तुम नहीं जानती हो ये भगवान है। ट्रैक्टर थोड़ा देर के बाद लाएंगे, वो तो ट्रैक्टर ला रहे, कोई मना नहीं होगा। ये कृष्ण है, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कृष्ण बड़ी हो। तुम जैसी स्त्रियों करोड़ भवों के इशारे से तुम जैसा सुंदर और गुणवान करोड़ों करोड़ स्त्रियों को प्रकट कर सकते हैं, इतना अभिमान में न हो। सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि आप बड़ी हो गई और इतना तिरस्कार कर रही हो, बोल रही हो। तो श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट कलह चालू हो गया अपने स्वयं के भाई से, सहोदर भाई से। वो कह के तुम मेरा भाई हो और कृष्ण का तुम पक्ष ले रहे हो, ये उनके झगड़ा हुआ श्रीमती राधा रानी से और किसे, श्रीराम कौन है, भाई है, भाई और बहन से झगड़ा चालू हो गया। और श्रीमती राधा रानी नहीं सकती झगड़े को, यही उनका क्लेम था कि तुम इतना गलत कृष्ण है, हर एक तरह का दुर्गुण है, उसका साथ दे रहे हो, उसका पक्ष ले रहे हो, और मैं तुम्हारी बहन हूँ, सभी गुणों से संपन्न, और मेरा मेरे विरुद्ध बोल रहे हो, और इसको लाए हो मिलाने के लिए, नहीं जानते हो क्या क्या घटना घटी है। तो अंत में श्रीमती राधा रानी ने श्राप दिया कि मुझको इनका तुम्हारे भाई हो, लेकिन अब मैं सह सह नहीं सकती हूँ, तो मैं श्राप देती हूँ, जाओ मर्त जगत में और असुर बन जाओ। पृथ्वी पर तुम जो मर्त जगत में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, मर्त जगत में जेंटिल मैन के रूप में तुम असुर के रूप में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, जाओ नीचे। और इतना अभिशाप सुनते ही उनके भाई थे श्रीराम एकदम वो समझ गए कि कितना भारी सीरियस अपराध, कृष्ण को देखे बिना, कृष्ण के संसर्ग के लिए एक क्षण भी युग के समान बीतता था, अब हमें जो वर्षों तक, हजारों वर्षों तक मर्त जगत में कृष्ण से दूर रहना पड़ेगा, लगे रोड फेंटेड हो गए श्रीराम। और श्रीराम को भी क्रोध आया, श्रीराम ने कहा कि तुम कृष्ण का तिरस्कार करती हो, तुमने मुझे श्राप दे दिया, मैं भी श्राप देता हूँ। तो श्रीराम ने श्री राधा रानी को तीन श्राप दिया, उसने इस बार राजा ने एक श्राप दिया, श्री राम ने कितना दिया, तीन। पहला श्राप था, ऐसे ऐसा ही वर्णन किया गया है, तुम वैश्य कन्या के तरफ झगड़ा करती हो, इसलिए तुम भी मर्त जगत में जाओ और वैश्य कन्या बनो। जानते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की कन्याएं पुत्रियां लड़कियां चाहे कोई भी स्त्री झगड़ा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? शिष्टाचार होता है, सभ्यता होती है, कल्चर होता है, बढ़िया से ज्ञान होता है, तो ऐसे झगड़ा उगड़ा नहीं करती। क्षत्रिय की जो स्त्रियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उन लोग भी थोड़ा सा कल्चर होता है, तो वो लोग भी भाई से पति से झगड़ा तंका नहीं करते, आपस में झगड़ा नहीं करते। और शूद्र की जो कन्याएं होती हैं, वे लोग भी झगड़ा नहीं करते हैं। वे लोग क्यों नहीं करती हैं? उनको भय होता है, हम लोग झगड़ा करेंगे तो हमारे पति चाहे भाई हो तो शूद्र पर चला देते हैं तमाचा, तो वो लोग डर से झगड़ा नहीं करती हैं। डर होता है, कल्चर नहीं होता है, लेकिन डर से झगड़ा नहीं करते हैं। और ऊपर की कल्चर संस्कृति है, सभ्यता है, इसे झगड़ा नहीं, ज्ञान। और वैश्य कन्याएं संस्कृति भी पूरा नहीं होती है और डर भी नहीं होता है, तो ये लोग खूब झगड़ा करते। तुम वैश्य कन्या के तरह झगड़ा कर रही हो, तुम जाओ मर्त जगत में ग्वाली में बनो, वैश्य कन्या बनो, तुमको बनना पड़ेगा। यह श्राप था और यह भी राधा रानी के असह्य श्राप था, कृष्ण से युक्त होना पड़ेगा, मर्त जगत में जाना पड़ेगा। तो यह बहुत भारी राधा रानी के लिए श्राप था, लेकिन इससे भी एक और कठिन श्राप दिया उसने। यह तो श्राप उसने श्राप दिया श्री राम ने कि मर्त जगत में जब तुम जाओगी, वैश्य कन्या बनोगी और 100 वर्षों तक लगातार तुमको कृष्ण के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। 100 वर्षों तक प्रकट रूप से कृष्ण से अलग रहेंगे और 100 वर्षों तक तुम तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू ही बहाना पड़ेगा, आंसू सूखी गई है। 100 वर्ष तक कृष्ण का वियोग तुम्हें होगा। दूसरा साथ था, इससे भी कठिन साथ एक और दे दिया, यही अपने आप में बहुत कठिन है। तीसरा श्राप मर्त जगत में तुमका कम से कम मूर्खों के दृष्टिकोण में दृष्टि से तुम्हारा विवाह कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से होगा, कृष्ण से नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा। अब दोनों पार्टी एकदम राधारायण, यह साप मिल गया कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग और कृष्ण के अतिरिक्त मेरा विवाह किसी दूसरे के साथ होगा, मुझे किसी दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, यह तो और कठिन था। अब दोनों ऋषिंग राधा रानी फिर रोने लगी, अब श्री राम तो बेचारे पहले से रो रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण अब सांत्वना दिए श्रीमती राधा रानी को भी, श्री राम को भी। श्री राम को उन्होंने सांत्वना दिया कि कुछ चिंता मत करो श्री राम, मर्त जगत में जाओगे, एक रूप से जाओगे, जब मैं भी अवतार लूंगा, तुम मर्त जगत में जाओगे तो मैं भी अवतार लूंगा वहां पर, तो एक रूप से तुम असुर बनोगे एक अंश से, और एक अंश तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसकी चिंता मत करो। साफ सत्य रहेगा, लेकिन एक अंश से, आधा अंश से तुम असुर बनोगे और आधा अंश इसी रूप में श्रीदान के रूप में मेरे साथ रहोगे। तो उसका तो कुछ समाधान हो गया श्रीमती राधा रानी का, उन्होंने बताया कि आप यदि गोपी बनोगी तो मैं भी गोप बनूंगा, मैं साथ रहूंगा। और जहां तक 100 वर्ष के वियोग की बात है, तो बाह्य दृष्टिकोण से तो भले मैं अलग रहूंगा, लेकिन कभी भी आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरे की दृष्टि में तो लगेगा कि हम 100 वर्षों तक अलग हैं, लेकिन मैं गुप्त रूप से श्रीमती राधा रानी आपके साथ ही रहूंगा। और तीसरा के लिए समाधान किया कि ऐसे तो कहने के तो कोई दूसरे गोप से आपका विवाह होगा श्रीमती राधा रानी, लेकिन उस गोप के रूप में भी मैं ही रहूंगा, मैं भी एक अंश से दूसरा गोप बनूंगा, मैं ही रहूंगा, मेरा नाम कुछ होगा, मेरा रूप कुछ और होगा, लेकिन मैं दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, मैं ही रहूंगा। तो श्री राम के साथ संसार तो अवतार हुआ, भगवान यहाँ आए, श्रीमती राधा रानी यहाँ आई। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से हुआ था, अभिमन्यु नाम था, अभिमन्यु, लेकिन वो स्वतंत्र व्यक्तित्व तो नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के वो छाया थे, हम लोग चलते हैं ना धूप में तो छाया पड़ गया कृष्ण। इसीलिए ब्रज में एक बार लोगों को कौतूहल होता था, आश्चर्य होता था कि जब अभिमन्यु घर में चलते थे तो उनकी छाया नहीं बनती थी, हम लोग चलते हैं तो छाया बनता है ना, छाया आ जाता है हमारे जैसे, लेकिन अभिमन्यु चलते थे तो छाया ही नहीं बनती थी। तो अभिमन्यु जो थे कृष्ण ही थे, कृष्ण ही अपने को अभिमन्यु के रूप में प्रकाशित किए थे, अपनी छाया के रूप में। यद्य कि नाम अलग था, रूप अलग था, किसी दूसरे के पुत्र थे, कोई बहन दूसरी थी, माँ दूसरी थी, लेकिन वो कृष्ण ही थे। तो अभिमन्यु श्रीराम के श्राप के कारण ऐसा हुआ था, और चूंकि श्राप है तो श्राप को सत्य करना है, तो श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से हुआ था। उसे बार बार हम चर्चा करते हैं, परकीय भाव अथवा उपपत्ति भाव, भाव समझते हैं ना। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के उपपत्ति हैं, लेकिन उपपत्ति का भाव है, विचार है इस तरह का। तो इस तरह इसीलिए श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। और जब श्रीराम, आप लोग जानते हैं एक रूप से तो रह थे ना, अब इस लीला में भी श्रीराम थे, भौम लीला भगवान की हो रही थी, श्रीराम सखा के रूप में थे, लेकिन एक रूप से उन्हें शंखचूर नामक दैत्य के रूप में, असुर के रूप में अवतार लिए थे। आप लोग जानते थे एक बार रास लीला हो रही थी, तो शंखचूर क्या हुआ, आया जल्दी से और कई गोपियों को पकड़कर सिंह राधा रानी को लेकर भाग गया। भगवान वही है और इतना तेजी से, आप बहुत बलवान था, उसको कई एक गोपियों का सीधे पकड़ा, किसी का हाथ में, किसी एक हाथ में दूसरे को लेकर भाग गया। तो चित्कार करने लगी गोपियां, जिसको पकड़ कर, सभी चित्कार कर रही थी, लेकिन जिसको पकड़ कर ले ही गया था हसुर, तो भगवान उसका पीछा किए और उसका वध किए। तो वहां पर ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने उसको मारा, एक ज्योति उसके शरीर से आकाश में गई, आकाश में गई, और आकाश को घूमते घूमते कृष्ण के शरीर में नहीं, जाके श्रीराम के शरीर में गई, कृष्ण के शरीर में नहीं। शिशुपाल का वध हुआ था, शिशुपाल को भगवान ने मारा था, तो क्या हुआ था, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति आकाश में गई, घूमती रही, घूम घूमकर भगवान के चरणों में आकर समा गई थी हस्तिनापुर में, राजकीय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज। लेकिन शंखचूर को भगवान ने मारा और उसे जो ज्योति निकला, तो ज्योति आकाश में गया, इधर उधर घूमता रहा और अंत में आकर श्रीराम के शरीर में प्रवेश कर गया। तो शंखचूर जो असुर बना था पूरा श्रीराम के रूप में इधर रहा, और शंखचूर को भगवान ने मारा तो उसके एक मणि था, बहुमूल्य मणि, उस मणि को भगवान ले लिए। भगवान ने उस मणि को बलराम जी को दे दिया, बलराम जी ने उसे विशाखा को दे दिया, और विशाखा जी ने उसको राधा रानी को दे दिया, मणि राधा रानी को प्राप्त हुई। एक दिन जमुना में उस मणि को अपने कंचुकी में अपने अंदर के वस्त्र में छुपा कर रखी थी, और श्रीमती राधा रानी जमुना जी में गई, जैसे झुक कर कुछ घुटने पर पानी में झुक कर पानी ले रही थी जैसे बैठी, तब तक वो मणि उसमें गिर पड़ा छोटा सा, और जमुना जी से चुरा लिया, जमुना जी से मणि को चुरा लिया। और जो चुरा कर उसने क्या किया, जमुना जी ने अपने पिताजी को दे दिया, पिताजी कौन है, सूर्य को दे दिया। और सूर्य कि पूजा करने वाले एक द्वारिका के बहुत बड़े व्यक्ति थे, सूर्य के भक्त थे, क्या नाम था, सत्राजीत और प्रसन्नजीत। तो सत्राजीत ने सूर्य की पूजा किया तो वो मणि सत्राजीत को दे दी, वो मणि सेमंतक मणि वो सत्राजीत को दे दी, और सत्राजीत ने उसको किसको दे दिया। बहुत घटनाएं हैं, और सेमंतक मणि को तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। अंधता उन्हें सत्यभामा जी को प्राप्त हो गए। सत्यभामा मतलब श्रीमती राधा रानी, सत्यभामा जी को मणि प्राप्त हुए। तो ऐसे यह घटना हम यह कह रहे थे कि अभिमन्यु का, श्रीमती राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से हुआ था, परंतु वास्तव में अभिमन्यु कृष्ण ही थे, कृष्ण के ही छाया थे। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह कृष्ण का दूसरे व्यक्तित्व से, स्वतंत्र व्यक्तित्व से नहीं हुआ था, कृष्ण से ही हुआ था। साढ़े चार बजे हम लोग का प्रसारण होगा और 10 मिनट बाकी है, और क्या कहें। एक माता जी कहा ना, कहाँ है महाराज बताए ना।
होता है कि जो लड़की जिनकी शादी हो जाती है वो अपने मायके पहले जाती है, अपने पिता के घर। तो राधा जी भी जावत से अपने पिताजी के घर जाती है, वो थोड़े दिन वहाँ रहती है, और जब वो वापस अपने ससुराल जाती है तो उनको बहुत सारी मिठाई और जेवर और कपड़े जो अपने ससुराल में उनके लिए दिया जाता है। तो जब मिठाई दी जाती है तो उसमें एक स्पेशल मिठाई है जिसका नाम है घेवर, ज़्यादातर राजस्थान में ये बनती है, और वो बनती है मैदे से और जैसे बास्केट जैसी बनती है, और उसमें फिर रबड़ी और सूखा मेवा सब ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है। तो वो काफ़ी भेजे जाते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली स्वीट है, तो वो विश्वभानु काफ़ी बास्केट भर भर के देते हैं। तो जब राधा जी जाती है, जब वापस आती है जावट, तो वो घेवर वन में होती हुई आती है, और ये स्वीट कृष्ण को खूब ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो कृष्ण जी वहाँ पर आते हैं और राधा जी उनको खिलाती है। तो एक बार ऐसे होता है कि सारी घेवर कृष्ण खा जाते हैं। तो वो सोचते अभी क्या करोगी, जब ये जावट जाओगी तो यहाँ पे भी सबको बहुत पसंद है, स्पेशली कुटीला और जतीला को, तो अब क्या करोगी पता नहीं। तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि अब क्या होगा, तो कृष्ण के कुछ नहीं, तुम जाओ अपने घर, और वही उनमें अपने हाथ धो लेते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट का नाम घेवर वन पड़ा है। फिर जब राधा जी जावट आती है तो जतीला कुटीला वेट करते हैं और कहते हैं दिखाओ क्या क्या सामान लाए हैं। तो राधा जी सब खोल के दे देती है, वो लोग देख लेते हैं, अपनी अपनी साड़ियाँ ले लेते हैं, जो भी सब सामान है। उस समय अभिमन्यु वो एक क्या बोलते ट्रेडर है, वो सामान इधर से उधर ले जाते हैं बेचने के लिए, तो वो घर पे थे नहीं। फिर जब देखते हैं मिठाई में लड्डू है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, बर्फी है, सब कुछ है, लेकिन घेवर नहीं है। तो वो राधा जी को कहते हैं कहाँ है घेवर, किसको खिला के आए घेवर, इस बार क्यों लेकर नहीं आए। तो वो कहते पता नहीं कहाँ है। तो कहते जरूर तुम कृष्ण को खिला के लाए हो, वही जो चोरी करके कर सबकी माखन खा लेता है, आज उसको तो सारी घेवर भी खिला के आए। तो राधा जी कहते पतो ना है। तो फिर कहते ठीक है, आज अभिमन्यु को आने दे घर पे, हम उसको सारी शिकायत लगाते हैं। तो जो भी सब सामान आया था वो लोग अलमीरा में सारा लॉक कर देते हैं, और फिर वेट करते हैं। वही कुटीला का जो नरन है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो उसकी माँ के सिर में बातें बनाती रहती थी, सब उसके सिर में डालती थी, पता है इसने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, सारी उसका दिमाग खराब कर देती है। और जटीला का भी कहते हैं कि उसकी जटा, उसके जो बाल थे वो बहुत लेजी थी, वो कभी अपने बाल कंगन नहीं करती थी, इसलिए उसका बाल भी बहुत बड़ा था, जटीला चट की तरह। तो वो कहते जो भी बाल कुटीला उसके कान में कहती वो सारा उसकी जटा में जाके बैठ जाती थी। और काफी समय तक दोनों यही बातलाप करते रहे। तब राधा जी अपना घर का सब काम कर दिया और सोचिए अब क्या होगा क्या होगा। जब शाम को अभिमान्यु आते हैं काफी थके हुए हैं क्योंकि काफी गांव में उनको घूमना पड़ता है अपनी जो सामान बेचने के लिए, तो वो थका हुआ आता है तो वो सड़क वो दरवाजे पे दोनों बैठ जाती है और कहते हैं देखो बहू रानी आ गई है, दादा रानी आ गई है, लेकिन आज उसने तो कुछ ऐसे किया है, सारी शिकायत करने लग जाते हैं कि सब कुछ आया है लेकिन घेवर नहीं आया है। तो अभिमान्यु कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके घर से तो हमेशा कितना घेवर आते हैं कि आप लोग महीने भर तक खाते रहते हो। तो कहते हैं नहीं आओ दिखाओ, मैं हमने सारा सामान इसलिए कालमीरा में लॉक कर दिया है। तो कहते हैं चलो चलो देखते हैं, क्योंकि अभिमान्यु जानता था कि इनकी माँ और बहन का स्वभाव ऐसे था तो वो कभी मानते नहीं थे। फिर जाते हैं, जुई जतीला आलमीरा तावा चाबी लगा के खोलती है तो सबसे पहले सारी घेवर उसके ऊपर गिरती है, सारी रबड़ी जो उसमें थी वो सारी ऊपर से नीचे तक उसके शरीर पे लग जाती है और दोनों सोचने लगते कि ये क्या हुआ। और अभिमान्यु कहते देखो अब हमेशा इसकी शिकायत लगा रहे थे, इतनी घेवर है आप सालों भर तक खाते रहोगे, अभी खाओ बैठे बैठे। तो ये सब लीला यहीं जावटती हुआ था और ये सब योग माया और कृष्ण की लीला से सब हुआ था। हरे कृष्ण।